اگلی کہانی ہے گندگی کا بکسا۔ لندن میں ہمپات ہوئے تو ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ لندن واسی اب برف دیکھنے کے لیے اسکاٹ لینڈ یا انیہ اتری شہروں کی اور جاتے ہیں۔ سفید کرسمس تو اب کتابوں، کارڈوں یا لوگوں کی یادوں میں ہی دکھائی دیتا ہے، کنتو دلیپ اور جیا کے رشتوں میں جو ٹھنڈا پن بیٹھ گیا ہے وہ جمی ہوئی برف سے کہیں ادھک سرد اور بھیاوہ ہے۔ آج لگ بھگ 2 ورش ہونے جا رہے ہیں دلیپ نے کام دھام چھوڑ رکھا ہے۔ گھر میں بھی شراب اور شام کو پب میں بھی شراب، ناشتے اور بھوجن میں کیول شراب ہی شراب۔ ایسا کیا دکھ ہے دلیپ کو، وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کے اس ویوہار سے جیا کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے۔ وہ بیچاری دن بھر نوکری کرتی ہے، گھر آ کر اپنی بیٹی پلک کی پڑھائی میں سہایتا کرتی ہے اور رات کو بھوجن بنا کر دلیپ کی پرتیکشا کرتی ہے۔ اب تو پرتیکشا کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ मोह माया को त्याग दो, जीवन का एक ध्येय बना लो कि जानते बूझते किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाओगे, बस सत्कर्म करते रहो, फल की चिंता में समय व्यर्थ ना करो, काम और वासना के पीछे भागना छोड़ दो। ये शरीर गंदगी का बक्सा है, प्रकृति ने वासना के लिए उपयुक्त अंगों को मलमूत्र बाहर निकालने का रास्ता भी बना दिया है। गंदगी से बचो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। गुरुजी की बातें जया के दिमाग को मथती रहती हैं। आजकल जया स्वाध्याय के सत्संग में चली जाती है, कुछ समय के लिए ही सही, शरीर और उससे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा सा मिल जाता है। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए, इस बात का जया के पास कोई उत्तर नहीं। जीवन की गति शुरू शुरू में इतनी तीव्र थी कि उसके पास स्थूल बातों के अतिरिक्त किसी भी विचार के लिए समय नहीं था। सूक्ष्म को जानने या समझने के लिए समय ही कहां था। राज ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हर विषय पर बातचीत कर लेती है, विषय चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल। राज के पास जैसे हर प्रश्न का उत्तर मौजूद रहता है। वो कई बार सोचती भी है कि यदि दिलीप और उसके बीच एक खाई सी ना बन गई होती तो क्या राज उसकी सोच के दायरे में कदम भी रख सकता था। राज शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, सिगरेट से भी परहेज, फिर तमाकू का तो सवाल ही कहां उठता है। क्या यही कारण है कि जया राजन के साथ समय बिताकर थोड़ा हल्का महसूस कर लेती है? केवल इतना कारण ही तो नहीं हो सकता। जया सदा ही दिलीप में एक मित्र तलाशती रही, किंतु वो मित्र उसे राज में ही मिला। पति पत्नी एक दूसरे के मित्र क्यों नहीं बने रह पाते? लेकिन ज्योति और दक्षा के भी तो प्रेम विवाह ही हुए थे। जब भी उनसे बात करती है तो उनके मन में भी यही परेशानी पाती है कि विवाह के बाद उनके पति केवल पति ही बनकर रह गए हैं, मित्र ना जाने कहां खो गए हैं। परंतु उन दोनों के पति अपने अपने व्यापार में जुटे होने के कारण अपनी अपनी पत्नियों के मित्र नहीं बन पाते, दिलीप की तरह समय को शराब में नहीं बहाते रहते। जया ने राज से ही तो प्रश्न किया था, राज क्या वास्तव में जीवित रहते मोह माया से मुक्ति मिल सकती है? तुमने कैसे इतनी आसानी से अपने जीवन की आवश्यकताओं को इतना सीमित कर रखा है? मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाती? जया, मैंने एक घटना राजा जनक के बारे में पढ़ी है। वे राजा होते हुए भी एक सन्यासी थे। राजशाही के बावजूद उनके दरबार में काफी हद तक लोकतंत्र मौजूद था। उनके दरबार में किसी ने प्रश्न किया कि हे राजन, तुम संसार के सभी सुख भोग रहे हो, राजा हो, चांदी के बर्तनों में भोजन करते हो, सोने के पलंग पर सोते हो, और फिर भी चाहते हो कि हम मान लें कि तुम मूलतः सन्यासी का जीवन जी रहे हो, ये कैसी राजनीति है? राजा जनक कुछ देर विचार करते रहे। एकाएक उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा प्रश्न करने वाले को 2 दिन पश्चात फांसी पर लटका दिया जाए। भला राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता था। उस व्यक्ति को कारागार में पहुंचा दिया गया, किंतु कारागार में उसे मखमली बिस्तर दिए गए, भोजन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन दिए गए, परिचारिकाएं उसे उपटन लगाकर स्नान करवाने के लिए आईं। जीवन का हर सुख जो वो व्यक्ति सोच तो सकता था किंतु महसूस नहीं कर सकता था उसे दिया गया, और 2 दिन पश्चात उसे राजा जनक के दरबार में लाया गया। राजा जनक ने उस व्यक्ति से पूछा, हे महानुभाव, तुम्हें फांसी तो अभी लग ही जाएगी, किंतु तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में तुमने जीवन का हर सुख भोगा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने भोजन में क्या क्या व्यंजन खाए? क्या तुम्हें याद है कि उस मखमली चादर का रंग क्या था जिस पर तुम सोए थे? उस परिचारिका का चेहरा या नाम याद है जिसने उपटन लगाकर तुम्हें स्नान करवाया था? वो व्यक्ति आंखें नीचे किए बोला, राजन, मुझ पर तो मृत्यु की तलवार लटक रही थी, भला मैं उन सुखों का आनंद कैसे ले सकता था? राजा जनक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे मित्र, ठीक उसी तरह मैं भी इन सुखों को भोग नहीं पाता। मैं भी मृत्यु से आतंकित हूं, मैं जनता के दुखों से पीड़ित हूं, मेरे लिए इन सुखों का कोई अर्थ नहीं है। यों कहकर राजा ने उस व्यक्ति की फांसी की सजा माफ कर दी। जया एक तक राज की बातें सुनती जा रही थी। कितने सुंदर ढंग से उसकी हर बात का उत्तर देता है ये इंसान, कितना सरल किंतु कितना कठिन था उसका प्रश्न। और राज ने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी संस्कृति में से ही कथा खोज ली। वो राज से पूछ बैठती है, राज, तुम अपना एक आश्रम क्यों नहीं खोल लेते? जितनी अच्छी बातें तुम कर लेते हो, जितना अपने आप पर तुम्हारा नियंत्रण है, उस हिसाब से तो तुम्हें स्वामी जी होना चाहिए। तुम्हें संसार को अपना सारा ज्ञान बांटना चाहिए। राज बस मुस्कुरा भर देता। मुस्कुराहट ही तो जया के जीवन से गायब हो गई थी। दिलीप से विवाह अपने आप में उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसका 4 फुट 10 इंच का दुबला पतला शरीर, सपाट सीना, देखने में भी कहीं ग्लैमर का नामो निशान नहीं। उस पर पढ़ाई लिखाई के शौक ने बचपन से ही आंखों पर चश्मा चढ़वा दिया था। मां बाप को बस एक ही चिंता कि बेटी का विवाह होगा तो कैसे। जया को बार बार ये याद दिलाया जाता था कि उसकी साधारण शक्ल और सूरत के कारण ही देखने वाले नापसंद कर जाते हैं। घर की एल्बम में से जया के सभी चित्र एक एक करके लड़के वालों के यहां पहुंच चुके थे। अब तो उसे फोटोग्राफर की दुकान पर जाना भी अखरने लगा था। दिलीप ने तो उसे बिना देखे बिना मिले ही विवाह कर लिया था। जया ने तो मनी मन तय कर लिया था कि सारा जीवन ऐसे पति की सेवा करेगी जिसने उसे अपने ही परिवार की चुपती हुई निगाहों के प्रश्नों से बचा लिया। वो अपने दिलीप के साथ ही चित्र खिंचवाया करेगी। चित्र भी समय के साथ साथ धुंधले पड़ जाते हैं। हर समय की एक अपनी सच्चाई होती है। जया को भी शने शने मालूम होता गया कि दिलीप ने उससे बिना मिले विवाह क्यों कर लिया था। उस सच्चाई ने उसके शुरुआती सपनों को आहत कर दिया था। दिलीप को विनोदनी के माता पिता ने स्वीकार नहीं किया था। विनोदनी ने घर से भागकर विवाह करने से इनकार कर दिया था। यदि विनोदनी नहीं तो कोई भी चलेगी, मां को प्रसन्न ही तो करना है। इसी कारण दिलीप और जया के संबंधों में कोई कोमल तंतु जुड़ नहीं पाया। उनका मिलन केवल शारीरिक ही था। उनकी आत्माएं कभी एक नहीं हो पाई। शरीर मिलने के परिणाम स्वरूप पलक का जन्म भी हो गया, किंतु दिलीप को न तो कभी जया में ही कोई विशेष रुचि थी और न ही पलक में। पलक अभी 1 वर्ष की ही रही होगी कि दिलीप के भाई ने उन्हें लंदन आकर बसने की दावत दी। दिलीप को इसमें भी कोई रुचि न थी, किंतु जया को लगा शायद लंदन जाकर दिलीप का व्यवहार बदल जाए। ठीक सोचती थी जया, दिलीप का व्यवहार बदल ही तो गया है, न जाने परमात्मा को क्या मंजूर है। परमपिता परमात्मा में विश्वास की 3 स्थितियां हैं। हर व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करता है अपने संस्कारों के हिसाब से। एक ईसाई जब कभी प्रभु के बारे में सोचेगा तो स्वयमेव ही यीशु का चेहरा उसके आंखों के सम्मुख आ जाएगा। एक मुसलमान अल्लाह के अतिरिक्त परमात्मा के विषय में सोच ही नहीं सकता। हिंदू भी शंकर, विष्णु, राम और कृष्ण में अपना भगवान खोजता है। यदि आर्य समाजी है तो ओम में अपना प्रभु ढूंढेगा, किंतु इनमें से कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने परिवेश से आगे बढ़कर परमात्मा के विषय में सोच पाए। तर्क की दृष्टि से सोचा जाए तो धर्म मनुष्य की सोच को सीमित कर देता है और अध्यात्म की राह पर जाने के अन्य मार्गों से विमुख करता है। किंतु राज, इसमें गलती क्या है? जो व्यक्ति जिस राह से वाकिफ है वही राह तो चुनेगा। प्रश्न राह चुनने का नहीं है जया, विडंबना यह है कि मनुष्य उस राह का ही पुजारी हो जाता है जो कि उसे परमात्मा तक ले जाती है, परमात्मा को भूल जाता है। धर्म और अध्यात्मवाद दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। महत्वपूर्ण बात है परमात्मा में विश्वास। रीति रिवाज या आडंबर परमात्मा से दूर तो ले जा सकते हैं, कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकते। राज, तुम विश्वास की तीन स्थितियों की बात कर रहे थे। जया को फिर से राज की बातों में वो सुख मिल रहा था जिसके लिए वो दिलीप के साथ 22 वर्ष रहकर भी तरसती रही थी। देखो जया, तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में भोजन करने जाता है। वो एक परिवेश में जाकर बैठता है। सबसे पहले बैरा उसके पास आकर मीनू कार्ड रख जाता है। वो उस मीनू कार्ड को पढ़ता है और व्यंजनों के नाम पढ़कर ही उसे महसूस होता है कि उसे स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। उसके मुंह में पानी आने लगता है। उसकी स्थिति ठीक उस व्यक्ति जैसी है जिसे केवल बताया गया है कि भगवान में विश्वास करो, यदि उसमें विश्वास करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक में वास करना होगा। वो व्यक्ति या तो डर के कारण भगवान में विश्वास करता है या फिर लालच के कारण उसने स्वयं भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं किया है। दूसरी स्थिति है उस व्यक्ति की जो कि रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे ग्राहक को भोजन करते देखता है और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अंदाज लगाता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों को परमात्मा की पूजा कर उन्हें आत्मिक आनंद लेते देखता है। अभी भी उसे स्वयं ये ज्ञात नहीं है कि भोजन का असली स्वाद क्या है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति उस मनुष्य की है जो कि भोजन को स्वयं खाकर भोजन के स्वाद को महसूस करता है, यानी कि वो स्वयं परमात्मा से आत्मसात होकर प्रभु के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है और उसे जो सुख प्राप्त होता है वो नैसर्गिक सुख है। उस सुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। राज, तुम अपने ज्ञान को लोगों में बांटते क्यों नहीं? संसार को हक है कि सब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे ज्ञान का लाभ उठा सके। अभी तो मैं स्वयं ही अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा हूं जया। मैं स्वयं परमात्मा के साथ अपना तारतम्य नहीं बना पाया हूं, भला मैं कैसे किसी को जीवन की राह दिखा सकता हूं? राह से तो भटक रही थी जया की पलक। दिलीप के असंतुलित व्यवहार के चलते एक पलक ही तो थी जिसके होते जया को जीने का कारण मिल जाता था। आज वही जया को दुख देने पर उतारू थी। कम से कम जया तो यही सोचती थी। पलक एक मुसलमान लड़के से प्रेम कर बैठी थी। जया का तो समस्त संसार डगमगा सा गया था। जया के दिमाग में मुसलमानों को लेकर बहुत सी गांठें थी। लंदन के सनराइज रेडियो पर भी जब कभी अपराध के समाचार आते तो अधिकतर उनमें मुसलमान लड़कों के ही नाम सुनाई देते थे। जया की अपनी ममेरी बहन मुंबई में एक मुसलमान लड़के से विवाह कर घर से भाग गई थी। सारा परिवार सकते में आ गया था। उसके क्षेत्र में दंगा होते होते बचा था। शिवसेना और मुस्लिम संस्थाओं के बीच ठन गई थी। राजनीतिज्ञों के बीच बचाव से ही दंगा रुक पाया था। मामा जी तो ये सदमा सह नहीं पाए थे। मामी जी ने अपने पति की हत्यारिन से आज तक बात नहीं की थी। माफ करने जैसी स्थिति तो कभी बनी ही नहीं। दिलीप से बात करे या ना करे, कहीं शराब के नशे में कोई बेवकूफी न कर बैठे। जवान लड़की का मामला है, किससे सलाह करे? पलक को समझाया भी, परंतु जवानी कब समझदारी का परिचय देती है? जब रक्त में गर्मी होती है तो तर्क ठंडे पड़ जाते हैं। पलक को तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इमरान में कमी किस बात की है। उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी मां बैंक में काम करती है और इमरान स्वयं अपने कॉलेज का श्रेष्ठ छात्र है, फिर समस्या क्या है? वो नहीं समझती कि इमरान मुसलमान तो है ही, उस पर पाकिस्तानी भी है। पर मम्मी, इमरान पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? वो तो यहीं लंदन में पैदा हुआ था। जैसे जैसे मैं कैसे इंडियन हो सकती हूँ? मैं भी ब्रिटिश हूँ और इमरान भी ब्रिटिश है, तो जब दो ब्रिटिश शादी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट केयर कि इमरान किस धर्म को मानता है। ही इज नॉट आस्किंग मी टू चेंज माई रिलीजन। और फिर मैं और इमरान कौन सा? उसके मम्मी पापा के साथ रहने वाले हैं मम्मी, हम लोग अपने घर में रहेंगे। कितना आसान है पलक के लिए पलके झपकाते हुए कह देना कि दे आर ब्रिटिशर्स। बेवकूफ, इतना भी नहीं समझ पाती कि बड़े बड़े युद्ध जीत लेना कहीं आसान बात है, किंतु छोटे छोटे महायुद्ध लड़ना एक अलग ही समस्या है। प्रेमी युगल कितने कम समय में हिंदू या मुसलमान में परिवर्तित हो जाते हैं, इसका तो पता ही नहीं चलता। कोई भी इंसान अपने परिवेश से बड़ा नहीं हो पाता। धर्म हमारी शिराओं में हमारे रक्त का एक अटूट भाग बनकर उसके साथ बहता रहता है। हमारे सोचने समझने का ढंग हमारे धर्म से कब संचालित होना शुरू हो जाता है, इसका तो हमें पता ही नहीं चलता। अजान की आवाज सुनते ही एक मुसलमान मनी मन नवाज पढ़ने लगता है, तो कहीं दूर किसी मंदिर से आती आरती की आवाज किसी भी हिंदू का दिल श्रद्धा से भर देती है। हमारे सोचने, जीने, खाने पीने और मरने के ढंग भी जुदा जुदा है। खाली पलक के कह देने मात्र से कोई मुसलमान ब्रिटिशर नहीं बन जाएगा। हर समस्या न जाने राज पर जाकर ही कैसे दम लेती है। एक बार फिर जया राज के सामने है। यदि दिलीप उसके अपने पास होता तो क्या वो राज के पास कभी भी जाती? शायद उसके बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन वर्षा की बेटी ने भी तो ईरानी मुसलमान से विवाह किया है, तो फिर उसकी अपनी पलक भला ऐसा क्यों नहीं कर सकती? किंतु ईरान और पाकिस्तान के मुसलमान में भी तो अंतर होता है ना। जहां भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है, वहीं पति पत्नी के संबंधों में भी कड़वाहट शुरू हो जाती है। लेकिन वर्षा की बेटी भी आजकल हर पार्टी में अकेली ही दिखाई देती है। उसका ईरानी पति न जाने अचानक कहां गायब हो गया है। ये पाकिस्तानी भी न जाने कब तक हमारी जिंदगी में कड़वाहट घोलते रहेंगे। भगवान में विश्वास रखने वाले परिवार की बेटी को नमाज पढ़ाना सिखा देंगे, भारत के टुकड़े कराकर भी ये कहां चुप बैठने वाले हैं, हमारी बेटियों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। जया के दिमाग में मंथन जारी है। उसे डर है कि भारतीय सभ्यता नहीं बचने वाली। यहां पैदा हुए बच्चे भला कहां भारतीय संस्कृति का बोझ ढो पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी संस्कृति इतनी जल्दी खतरे में कैसे आ जाती है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम जीवन को व्यापक रूप में नहीं देख पाती हो। यदि दुनिया के सभी लोग मुसलमान हो जाएं या फिर ईसाई हो जाएं, उससे अंतर क्या होगा? ये अस्मिता, ये पहचान, ये संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। अब तुम सोचो, क्या सभी मुसलमान एक हैं? कोई शिया है तो कोई सुन्नी, कोई अहमदिया है तो कोई बोरी, फिर आगा खानी भी हैं और न जाने कितने अन्य। तुम्हें केवल इसी बात से प्रसन्न होना चाहिए कि दो इंसान आपस में प्यार करते हैं और बाकी का जीवन इकट्ठे बिताना चाहते हैं। अरे, जब ये जीवन ही चिरस्थाई नहीं है तो मनुष्य द्वारा बनाई गई विवाह जैसी संस्था कैसे स्थाई हो सकती है? राज पलक की वकालत करता दिखाई दे रहा था और जया की परेशानी का कोई हल मिलता नहीं दिखाई दे रहा था। जया टूटने लगी है। दिलीप में कोई बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा है। शराब, शराब और सिर्फ शराब। अब तो जया को मारने भी लगा है। बैंक अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं। मकान की मॉर्गेज की किश्त भी जानी बंद हो गई है। बिल्डिंग सोसाइटी की चिट्ठी भी आ गई है कि किश्त ना दिए जाने पर कुर्की करवा देंगे। जया का रक्तचाप बढ़ गया है। दिलीप के भाई ने भी पल्ला झाड़ लिया है। वो बेचारा भी क्या करे, जया ने हिम्मत जुटाकर दिलीप से बात शुरू की है। मॉर्गेज के पैसे कहां गए?
वो जया इस बार जरा हाथ तंग हो गया था।
बार में देने के लिए पैसे हैं और मॉर्गेज के लिए हाथ तंग था। अगर घर हाथ से निकल गया तो जवान बेटी के साथ सड़क पर रहना पड़ेगा। बोला ना, हाथ तंग हो गया था। शराब पीने के लिए पैसे होते हैं और मॉर्गेज के लिए हाथ तंग हो जाता है। शट अप यू बिच। और शराब के नशे में धुत दिलीप के हाथ का गिलास 4 फुट की जया के कंधे से टकराया। न जाने अचानक जया में कैसे इतनी शक्ति आ गई कि उसने पास रखा कॉर्डलेस टेलीफोन उठाकर दिलीप पर दे मारा और दिलीप ने जया को बालों से खींचकर सोफे पर पटक दिया। उसके बाद तो जया पर घूसों और लातों की बरसात सी शुरू हो गई। शोर सुनकर पलक कमरे में चली आई, मां को पिटते देख घबरा गई, सीधे पुलिस को फोन किया और पुलिस आकर दिलीप को अपने साथ ले गई। मां छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी और पलक एकाएक मां बन गई थी, जया के बालों में हाथ फिरा रही थी। सुबह को होना था, हो गई। नशा उतरने के बाद पुलिस ने दिलीप को छोड़ दिया।
इतना सब हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया?
राज जया के विषय में चिंतित था। 50वें जन्मदिन पर जया खुशी की जगह सुबक रही थी। मुंबई का जीवन बस एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मां बाप के प्यार से लेकर दिलीप की मार तक के जीवन के बारे में सोच रही थी। राज ने जया का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। जया उसके कंधे पर सिर रखकर राज से लिपट गई। ये शरीर गंदगी का बक्सा है, वासना को त्याग दो। गुरुजी के सभी शब्द जैसे किसी कुएं की गहराई में से आते प्रतीत हो रहे थे। गहराई, हां, वो पूरी गहराई तक राज के साथ उतर जाना चाहती है। जीवन ने उसे सिवाय दर्द के कुछ और नहीं दिया है। आज राज उसके हर दुख को सोख कर अपने भीतर उतार लेगा। आज दोनों दिमाग से बात नहीं कर रहे, आज राज और जया के दिल एक हो गए हैं। शरीर का सुख क्या होता है, ये जया को जीवन में पहली बार अपने 50वें जन्मदिन पर महसूस हुआ।